اپنے فیتھ کے بعد اس کی اسٹرینتھ ہے اس کا پولیٹیکل کیپیٹل. ان سب لوگوں کا پولیٹیکل کیپیٹل اروڈ ہو چکا ہوا ہے اس وقت. یہ ڈرتے ہیں. میں آئی ریئلی ونڈر کہ اپنے بھی جو ان کے سو کالڈ نمبر ہیں کبھی ان کو یہ کوالیفائی کرا سکیں گے. جی آئی ریئلی ہیو مائی ویری سیریس.
سر آپ کی اسی پیراگراف جو آپ نے فرمایا اسی پیراگراف میں آپ کا ایک رائٹ اپ ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو شروع کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے کہتی ہوں. مجھے اس وقت ایک عام آدمی ہوتے ہوئے آرمی کی انٹروینشن بہت زیادہ نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ, کہ دس از دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف جب سے میں نے ہوش سنبھالا کہ میں سینیٹرز بھی دیکھ رہی ہوں کہ جس کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے, بٹ دوز سینیٹرز آر چوزن بائی دا آرمی, ٹھیک ہے, یعنی کسی کو ابڈکٹ کر کے, اغوا کر کے, ان کو ووٹ دلوا کے, پیسہ دے کے, ہمیں نہیں پتا, ان تین بندوں کو ہمارے سر پہ مسلط کر دیا گیا, جس میں فیصل بابڈا, جس میں محسن نقوی اور جس میں سرفراز بگٹی. آپ کا ایک رائٹ اپ ہے اور بہت خوبصورت رائٹ اپس ہیں, میرے دل چاہتا ہے کہ پاکستان کا ہر آدمی اس کو پڑھے. دا آرٹیکل آلسو ایلیبوریٹ ایکسپلین دیٹ ملٹری پرسنز آر ٹرینڈ اینڈ ناٹ ایجوکیٹڈ, ٹھیک ہے, دی سولینز آر ایجوکیٹڈ اینڈ دس کوالیفکیشن گیوز دم مور ملٹی ڈائمینشنل آؤٹ لک کریٹولی انوویشن ٹو ہینڈل اینڈ ڈیل ود دا افیئر. اچھا اب آپ نے پہلے 10 سال چھوڑنے کے بعد, حالانکہ آپ کے بقول سولینز آر ایجوکیٹڈ اینڈ دس کوالیفکیشن گیوز دم مور ملٹی ڈائمینشنل ورک, پہلے 10 سال سے چھوڑ کے آج تک پالیٹیشین ہی سب سے زیادہ کرپٹ رہا آپ کا. جہاں اس کو ضرورت پڑی اس نے فوج کو بھی داخل کر لیا, جہاں اس کو ضرورت پڑی اس نے فنڈز کو بھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے, جہاں اس کو ضرورت کی اس نے منی لانڈرنگ بھی کر لی. کیا فرمائیں
اس میں جو آپ نے یہ پیرا پڑھا ہے نا جی, یہ ایکچولی ایک ہمارے بڑے سینئر ایئر فورس کے ساتھ ایئر کمانڈر شاید کمال صاحب, ان کا ایک آرٹیکل تھا جنرلز ان پالیٹکس, یہ جو آپ نے ایکسٹریکٹ پڑھا ہے یہ ان کا لکھا ہوا تھا اور اسی کو ہی میں نے ان کو ان سے اجازت لے کے پھر میں نے کاؤنٹر کیا تھا اور اپنا اس کے اوپر نیریٹو لکھا تھا, اور میں نے یہ ایگزیکٹلی بات کہی تھی. انہوں نے کمپیرزن کیا تھا کہ فوجیوں کا یہ کام نہیں, وہ پڑھے لکھے نہیں ہے سفران فنانا اور سولین, تو میں نے ان کو کمپیئر کیا تھا جی کہ دو منٹ کے لیے ہم اپنے آپ سولین کی بات نہ کریں, آپ پالیٹیشین کی بات کریں, چونکہ آپ وٹ یو ایکچولی مین از پالیٹیشین. ایک پالیٹیشین کی کیا کوالیفیکیشن آن دی ایوریج؟
مجھے تو جی لگتا ہے میں تو ایسے بھی پالیٹیشین دیکھیے جن کا نام کو.
تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. اب ہم کمپیئر کر رہے ہیں, اب چونکہ یہ سبجیکٹ آ گیا ادروائز میں اس کو نہ کرتا. آپ کو پتا ہے کہ این ایوریج 2-star جنرل ٹوڈے, چاہے ایئر فورس سے, آرمی, نیوی سے, ہی ہولڈز منیمم 2 master's ڈگریز. NDU آج جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے اس کی ریٹنگ دنیا میں کمپیئر کی جاتی ہے RCDS رائل اسکول آف ڈیفینس سروسز, اس لیول پہ یہ انسٹیٹیوشن آج ہیں. اس سے آپ کمپیئر کرتے ہیں فوج میں, اگر آپ فوج کی بات کرتے ہیں, ایک سپاہی کو بھی جو سب سے بیسک رینک ہے اس کو وار میٹیریل بننے کے لیے 4 سال کی ٹریننگ چاہیے, 4 سال کی بیسک. بالکل, میں آپ کو سب سے چھوٹا یونٹ فوج کا سپاہی جو ہے اس کو بھی ٹو بیکم اے وار میٹیریل 4 سال کی ٹریننگ چاہیے. کیا ٹریننگ ہے ہمارے پالیٹیشین کی؟
زیرو.
یہی ہے نا کہ آپ کسی بیک گراؤنڈ ہیریٹیج سے آتے ہیں بائی ورچو آف سم گدی یا کچھ, آئی مین بائی اینڈ لارج آپ وہ
ایئر شپ.
آپ کے سامنے جب جنرل مشرف صاحب کے وقت ڈگری کی بات آئی تھی, میں اس کو میں ڈگری کو میں پرسنلی اس حق میں ہوں کہ ہونی چاہیے نہیں, اپنی جگہ پہ ایک ڈبیٹ ہے, لیکن چونکہ سبجیکٹ آیا تو کتنی ڈگریاں آپ کی فیک نکلی تھیں, اور یہ وہ ہیں جو ابھی آپ کے سامنے جو ابھی ڈسکورڈ ہیں, جو ابھی تک فیک ڈگری والے جنہوں نے ایک دوسرے کی شکایت نہیں لگائی, انہوں نے تو ابھی بتایا نہیں. یہ اس حوالے سے لکھا گیا تھا, تو اس کو میں نے پھر ایک اپنا اس پہ کاؤنٹر نیریٹو دیا تھا کہ جس کو آپ دیکھیں, آپ نے گھر میں نل کا بھی ٹھیک کرانا ہونا تو اس پلمبر کی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے,
آپ نے علاج کروانا ہے, یو لک ایٹ دی بیسٹ آف دی بیسٹ.
اب یہ کوالیفیکیشن بتا دیں پبلک ریپرزنٹیٹو, آپ اکیڈیمیکلی دیکھ لیں, میں اب کیا بات کروں جی کہ پھر ہمارے آپ نے کئی بہت سارے دوست ہیں ناراض ہو جائیں گے. موسٹ آف دیم آر اسکول ڈراپ آؤٹس. آپ بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں موسٹ آف دیم, میں ایکسپشنس کی بات نہیں کر رہا, بڑے بڑے پڑھے لکھے اور بڑے بڑے لائق اور قابل لوگ بھی ہیں, یہ بات نہیں ہے, بڑے بڑے قیمتی لوگ ہیں, لیکن میں بلک کی میجورٹی کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. میں نے آپ کو گزارش کیا نا, بتا دیجئے کہ کسی قسم کی, میں وضوح سے کہہ سکتا ہوں کہ موسٹ آف دیم ہیو ناٹ ایون ریڈ دا کانسٹیٹیوشن, آئی کم اکراس دیم دے آر لاٹ آف فرینڈس آگے پیچھے ہمارے دوست ہیں آئی ایم سوری ٹو سے مجھے پتا ہے کہ میری اس گفتگو سے میں بہت سارے دوستوں کو بھی ناراض کروں گا بہت سارے سننے والے بھی ناراض ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ جو میں گزارش کر رہا ہوں یہ شاید غلط نہیں ہے جی حقیقت یہی ہے اور جس کو شک ہے وہ اسمبلی میں جائے بڑے آرام سے آپ کو پاس مل جاتا ہے کارکردگی دیکھ لیجیے وہاں پہ ان کی پرفارمنس دیکھ لیں ان میں سے کتنے ہیں جن کو آپ سن کے کہہ سکیں گے کہ جن کا لیجسلیشن کے ساتھ کوئی تعلق ہے خود دیکھ لیجیے وہاں جا کے اور میں شرمندہ ہوں یہ بات کرتے ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے
تارڑ صاحب جو ہمارے ایک لا کے وہ بھی ہیں منسٹر بھی ہیں میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ان کو آئین کی کتاب قانون کی کتاب کا مگر سم ٹائمز وہ جو بے راہ روی کی باتیں کرتے ہیں واٹ وڈ یو سی اباؤٹ
اب یہاں پہ عارف بین ہمارا ایک بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے اب وہ لوگ جو لائق بھی ہیں جو قابل بھی ہیں وہ جو پارٹی کے تقاضا جات ہیں ان کو جب ان کو جب ان پہ وہ کمپلشن ہوتی ہے ٹو ٹو دیٹ لائن وہ بھی ختم ہو جاتا یہاں اور میں اب بات یہاں پہ ذاتی ہو جائے گی ہمارے دوست ہیں کچھ میں ان کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار کہ ڈز اٹ مین سو مچ ٹو یو واقعی یار یہ کوئی یا تو واقعی ہمارے لیے انگور کھٹے ہیں ہمیں نہیں پتا یا تو واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے کیونکہ دو چار سچویشنز میں ایسی ہیں جو میرے کچھ قریبی دوست ہیں میں نے ان کو لکھا بھی بات بھی کرنے کی کوشش کی میں گیئر فور گاڈ سیک اینڈ آف دا ڈے ڈز اٹ ریلی میٹر ٹو یو میں کہ چونکہ اس میں مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ ٹھیک ہیں یہ غلط ہیں اٹس آبویس اٹس لائک اے ڈے لائٹ
کیا کہتے ہیں
میں کیا کہوں جی آپ کو پرسنل ہو جائے گی بات میں آئی وش نام لے کے بات نہیں تو میں آپ کو نام
بھی
میں آپ کو دو تین
بات کیا ہے ان سمری وٹ ڈو
دیکھیں دو تین میں آپ ایسے چلے ایسے کر لیجئے کہ جو آبویس نام دو تین فال آؤٹس ہوئی ہیں میں چلے اسی کی بات لے لیتا ہوں پی ایم ایل این کی بات لے لیتا ہوں لیٹ سے جو بڑے ناموں میں سے اگر میں لوں چودھری نثار صاحب وائی فیل آؤٹ آف دیم
خاقان عباسی
شاید خاقان عباسی تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں پرسنل ان کے ساتھ ڈائلگ بالکل میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح میں کیا کہوں کہ وہ کیا کہہ سکتے ہیں ان کا جو جس طریقے سے ان کی میں یہ کہوں گا کہ جہاں پہ آپ کی اتنی ایک لیگسی آف ریلیشن شپ ہو یہ ان کی ان کا بڑا پن ہے یا ایک آدمی کی برداری ہوتی ہے کہ وہ اس کے باوجود ان کو بڑے کمپوز طریقے سے اپنے ڈفرینسز کا بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت ہے کہ جن میں کچھ خمیر تھا they had to part with اب جہاں پہ یہی بات جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جی کہ پارٹیز جو لائلٹی آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں بات آپ کی وہاں سے وہاں پہ جو قابل لوگ بھی ہیں کئی بڑے بڑے قابل لوگ ہیں ان میں بٹ وہ دے ٹوٹلی سبمٹ ایکچولی میں چونکہ نام نہیں لینا چاہ رہا ذاتی طور پر ان کو
میں آپ نام نہ لیں مشاہد حسین مشاہد حسین واز ویری کلوز ٹو مسلم لیگ نون وہاں سے کاف گئے وہاں سے آرمی کے بڑا قریب رہے ان کا سٹینس ہی چینج ہو گیا ہی از ٹوڈ اور اس وقت سی پیک کے لیے چائنا ان پہ بہت کاؤنٹ کر رہا ہے
دیکھیے
واٹ وڈ یو سے واٹ میڈ ہم ٹو چینج ہز یہ 180 ڈگریز کا سٹانس کیسے چینج ہوا ہے
بین میرے حساب سے جو میں اپنے ان کچھ دوستوں میں یا ایکوینٹنسز ہیں جن کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوں آپ نے مشاہد حسین صاحب کا نام لیا ہمارے پولیٹیکل فورم پہ اگر میں 10-15 قیمتی نام گنوں نا پاکستان کے جن کو ہائیسٹ اسٹیم میں ہولڈ کرتا ہوں مشاہد حسین صاحب از ون آف دیم جی یہ ان کو میں اپنا پاکستان کا قیمتی سیاسی سرمایہ سمجھتا ہوں میں شاید غلط ہوں اپنی دانش میں میں آتا ہوں جو آپ نے پانا پارٹی لائلٹی چینج کرنا اس سبجیکٹ پہ میں آتا ہوں بعد میں میں ایم ٹاکنگ ایز این انڈیویجل کن کن فورمس پہ ہو رہے ہیں مجھے بتا دیجئے پہلی بات چلے انالائز کرتے ہیں نا میرا کیا معیار کیا کر رہا ہے میں نے اس پاکستانی کو دیکھنا ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کیسے کرتا ہے چونکہ مشاہد صاحب صاحب اس اسٹریچر پہ ہیں کہ جو انٹرنیشنلی لیول پہ پاکستان کی ٹھیک ہے مجھے آپ بتائیے کہ ان کی جو نمائندگی ہے پاکستان میں کسی جگہ پہ بھی آپ کو کبھی کوئی شرمندگی اٹھانی پڑی
تھینک
یو ویری مچ ان کی اپنے ذات کے اوپر کن کن فورمس پہ ہو رہے ہیں کوئی کسی قسم کا آپ کو چونکہ اب
داغ
بات ہو رہی ہے
کوئی داغ نہیں
جی آج بھی وہ شخص آج بھی ان کی ذرا بات سنیں وہ ریکنسر میرا خیال ہے کہ آئے وش ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کا فائدہ اٹھائے گی حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں
کہ
بیسیکلی وہ اکیڈیمیا کے ہیں یا ان کا بیسک جو تھا آیا پویا صاحب اور مسلم صاحب میں جانتا ہوں ان کو پہلے سے کافی تو ان کا وہاں سے شروعات ہے کہ اس کے باوجود لیکن کئی لوگ جب صرف اکیڈیمیا سے یا جرنلسٹ سے ہوں تو ان کی بڑی تھریٹیکل اپروچ ہوتی ہے جی از اے ویری پریکٹیکل پرسن جی ان کی اور ہمیشہ ریکنسلیشن کی وہ بات کرتے ہیں جی एंड आई थिंक ही कुड बी वन ऑफ द बेस्ट मीडिएटर्स
आज भी बात
करते हैं। और वो हकीकत है था काय की बात करते हैं जी, आपको उनको सुने उनकी बात, मैंने कहा ना किसी जगह पर भी उनका स्ट्रेचर, उनका अपना रिप्रेजेंटेशन, उनकी काबिलियत, उनकी लियाकत एट एवरी फोरम जी, और कोई बड़ापन नहीं जी, वेरी हम्बल जी, वेरी हम्बल जी। अब चूंकि नाम शख्सियत का हो रहा है तो जाती बात बन जाएगी, लेकिन ये मेरी राय उनके अब आइए अब आपने जो बात कही पार्टीज की लॉयल्टी, इस सब्जेक्ट को ये पूरा एक मौजू है जी, क्या पार्टी और क्या लॉयल्टी है जी। कोई पार्टी या लॉयल्टी नाम की चीज नहीं है, सब शख्सियात की लॉयल्टी है। अगर पार्टी की लॉयल्टी की बात होती तो आपका ख्याल है पीएमएलएन में आया और बहुत जिन लोगों ने 35-40 साल लगाए हैं पार्टी में वो डिजर्व नहीं थे करते टू बी सक्सेसफुल इन द पार्टी,
तो साद रफीक भी छोड़ के चले गए,
तो फिर पार्टी की कौन सी बात हुई, पार्टी की कौन सी बात हुई। हाँ अगर पार्टी की बात हो फिर आप कह सकती हैं कि ये जो आप स्विच ओवर, हाँ अच्छा दूसरा आ जाइए पार्टी चेंज के ऊपर, इसके ऊपर मैंने कई दफा कई फोरम्स पे बात की है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर जना वाज अ कांग्रेसमैन,
ही चेंज इनटू,
ठीक है, बट बाद में उन्होंने ज्वाइन किया मुस्लिम लीग, पर दोनों जमातों में भी रहे, तो अब हम क्या कहेंगे उनको मिसाल के तौर, क्योंकि मिस्टर जना की बात आई है तो हम फिर वहां पर, लेकिन मैं देखिए पार्टी जो है, पार्टी के साथ आपका जब हम ये बात करते हैं आपकी एक नजरियाती तौर पे आप मुंसलिक होते हैं पार्टी के साथ। अगर आपके नजरिए में क्लैश आ गया है, अभी मैं शख्सियत से एक तरफ होकर बात कर रहा हूं, उस फंडामेंटल नजरिए में आपका क्लैश आ गया है तो कोई हरज नहीं। देखना यह है कि आपने पार्टी किसी मकसद के तहत, किस नजरियत के तहत तब्दील की है या किसी जाती मकासद के तहत आपने की है, कुछ फायदा आपको ना पहुंचा हो या नुकसान आपका हुआ इस मकसद के लिए, तो पार्टी लॉयल्टी चेंज भी मतलब ये कोई ऐसी बड़ी, हां वन शुड रिमेन लॉयल बाय एंड लार्ज मैं कहूंगा, लेकिन आपने ये पहली बात तो मैंने आपको साबित कर दिया ना, देयर इज नथिंग लाइक पार्टी, यहां पर शख्सियात की लॉयल्टी है। या आप मुझे बता दीजिए कि पार्टी इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई पार्टी पाकिस्तान में आप कह सकती हैं उस तरीके से तो शायद आप जमात इस्लामी को कह सकती हैं, वो वाकई एक पार्टी है जिसको आप कह सकते हैं कि जमहूरी, जो उनका जमहूरी अंदाज, जमहूरी तरीके से इलेक्ट सेलेक्ट करना, गो उसकी एक निश है छोटी उस हिसाब से चाहे, लेकिन उस तरीके से अगर आप कहें तो जो जमहूरी तकाजे हैं,
लोग इस पे भी एतराज उठाते हैं कि वो जो नाम दे दिया जाता है एवरीबडी हैज टू वोट फॉर दैट नेम। मुझे एक अजीब सा सवाल है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, इमरान खान साहब से बदले का निशान इलेक्शन कमीशन ने छीना, तो इस ग्राउंड के ऊपर छीना था कि इन्होंने पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। आप देखिए कि मुस्लिम लीग कानून की अगर हम बात करते हैं, खाकान अब्बासी साहब ने छोड़ा, निसार साहब ने छोड़ा, साद रफीक ने बड़ा लाउडली अपना इजहार किया, मिफ्ते इस्माइल ने छोड़ा, बाकी लोगों ने भी, ख्वाजा आसिफ ने भी इसका इजहार किया कि ठीक है जी वो छोड़ के चले गए मगर हम हैं अभी साथ। तो फेयर पार्टी इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो मुस्लिम लीग नून में भी नहीं हुए, व्हाई इलेक्शन कमीशन डज नॉट इंटरवीन इन दैट,
क्योंकि इस वक्त वो उनके राइट साइड पे हैं। वेरी सिंपल, देखिए यहां पे इसके लिए थोड़ी बात होती है कि राइट और रॉन्ग के लिए तो बात होती नहीं, बात तो इसके लिए होती है कि हमारी पार्टी कौन है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है जुडिशरी में,
इज देयर एनीबडी हु कैन टेक इट टू द कोर्ट बाय लिस्टिंग के भाई इस बंदे को एतराज रहा, तो इनके तो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए।
बहन ये तो आपने एक सब्जेक्ट का, अभी आपने थोड़ी देर पहले तोशाखाना की बात की, तोशाखाना में जो इससे पहले वॉयलेशंस हुई हैं ये तो कोई वॉयलेशन ही नहीं है, अगर आप देखी जाए वो तो वाकई वॉयलेशन है। यहां तो टोटल इमरान खान का सिर्फ ये है कि घड़ी जो, अगर आप लीगली उसको एज ए केस, मैं वकील तो नहीं हूं लेकिन मैंने जो समझने की कोशिश की है उसमें सिर्फ फर्क इतना है कि बिकी पहले मतलब और उसके फंड जो है बाद में डिपॉजिट हुए हैं, वो ट्रांजेक्शन आउट ऑफ टाइम एसेट ये इसमें है, ये नहीं कि कुछ स्टेट को उस पर नुकसान हुआ है, स्टेट को एक्सचेकर को कोई नुकसान नहीं उसके ऊपर हुआ, जो मेन चीज है। आप जब जुडिशली देखते भी हैं इस किस्म की कोई प्रोसीजर चीज तो आप देखते हैं कि इवेंचुअली क्या स्टेट को क्या नुकसान हुआ मिसाल के तौर पर, तो बाकियों का ने तो
दिया भी नहीं
जी, वो तो स्टेट की कॉस्ट पे, लेकिन उसको कोई टेकअप करता है। अभी आपने जो बात
बताई कि ये खुलेगा, इन दोनों का केस खुल सकता है,
किन का,
नवाज शरीफ साहब का और जरदारी साहब का, तो शखाने की जो गिफ्ट
इनकी है। जब केसेस की अगर आप बात करेंगी
तो आप खुल सकते हैं।
देखिए फिर वही बात आ जाए, आपके ख्याल है कि केस ये तो बड़ी छोटी केसेज है उनमें, वो तो बहुत बड़े बड़े केसेज है इनके,
ये इनके माफ हो जाते हैं जहाज में बैठे,
यही तो होता है कि यही नहीं, कोर्ट में तो गए हैं, यही केसेस तो बाहर गए होते हैं, कोर्ट में तो जाते हैं लेकिन कोर्ट में कहां पे रुकवा दिया जाता है। ये क्यों अपना इमरान खान ने जब डिस्कवर किया कि नैब क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही, वेन लेटर ही लर्न कि नैब क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही, तो बात आपके सामने आ गई। ये जो मसल स्विंगिंग और ये ट्विस्टिंग ऑफ आर्म वगैरह सारा कुछ जो होता है ये कहां होता है? अनफॉर्चुनेटली यही तो इंस्टीट्यूशन ने जितना इसको अब्यूज किया।
अब हम आप ही के पास आ रहे हैं, हमने एक इदारे को इतना प्रोटेक्ट किया कि वो इदारा कभी उसने इंटरवीन नहीं किया था, मगर अब वो इदारा इतना इंटरवीन कर रहा है कि जिसके केसेस खोलने होते हैं खुल जाते हैं, जिसके बंद होने होते। अगर मैं गलत हूं या मेरा मतलब उस कैलिपर का सवाल नहीं तो मुझे करेक्ट जरूर कर दीजिएगा कि नवाज शरीफ साहब जब आए तो एयरपोर्ट पे पहुंच के उनके तमाम केसेस माफ कर दिए गए, तो इसका मतलब है कि आपका इदारा भी करप्ट हो गया। उसमें भी जो सीनियर पोजीशन पे आदमी है, क्या उसको कोई बेट मिली थी पोजीशन की, एक्सटेंशन की या पैसे की?
देखिए अरफाबेन, मैंने जब आपसे गुजारिश की ना, ये तो मैंने दोस्तों में अपनी उस गुफ्तगू को जो तारीखी पहलू एक पसमंजर था कि फौज और फौज की इन्वॉल्वमेंट, वो एक पूरा चैप्टर है और ये ढाई साल एक पूरा चैप्टर है जी। इन ढाई सालों में इस इदारे ने अपने इख्तियार को जिस तरह मिस यूज और अब्यूज किया है उसकी तो कोई इंतहा नहीं है जी।
वट इज द रीजन?
रीजन जाती है, जनरल बाईजी साहब का अपना था एक्सटेंशन, अब आर्मी चीफ इनका अपना है, और मैं इसी के लिए कहता हूं कि दे शुड राइज अबव दैट जी। इन्होंने करके देख लिया ढाई साल। मेरी इस गुफ्तगू को किसी दुश्मन की गुफ्तगू ना समझे, मैं भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी, और मैं आज भी कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि मैंने वर्दी पहनी हुई है जी, कि ये जो सफर है ये 35-40 साल का सफर जहां तक आप पहुंचते हैं, यही आर्मी चीफ कभी सेकंड लेफ्टिनेंट भी होंगे, लेफ्टिनेंट भी होंगे, कैप्टन भी होंगे, कितनी दफा कितनी क्लोज अपना, जी द डे यू वेयर दिस यूनिफॉर्म यू प्लेज योर सेल्फ यू प्लेज योर लाइफ, आप वहां से सफर करते करते आते हैं जी यहां तक आते हैं। मतलब एंड फॉर इनकी इतनी हम्बल प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बावजूद इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, दैट मीन्स कि उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये सारी बात जो बन गई है ये बन गई है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। चले, उन्हें एक लेगेसी इनहेरिट की, उन्होंने वो लाइन टो भी की, अब देख लें कि क्या अचीव कर सके हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ऑनेस्ट टू द सॉइल,
डू दे रिकॉग्नाइज?
आई होप दे डू जी। अरे देखिए ना, अब यहां पे वही बात आती है, बेटर सेंस प्रिवेल्स ही, आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स ही, क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं कहता हूं सब पाकिस्तानी अच्छे अपनी दानिश में इस सफर में लोग चल पड़ते हैं उस तरफ। वी हैव टू अरफाबेन पुट आर फिक्सेस टुगेदर जी, वी हैव टू फिक्स द सिस्टम जी। हमें डाइवर्ज नहीं होना जी, हमें कन्वर्ज होना है, हमने इसको इकट्ठा करना है, हमने इसको संभालना है, क्योंकि आप किसी को भी आप बुरा मत समझे, मैं कहता हूं सबको इकट्ठा लेके चले जी। और यहां पे हमने पाकिस्तान के हक में ये जो सारी फोर्सेज हैं और स्पेशली ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो इंस्टीट्यूशन, कभी आरफा बैन अगर हमारी या आपकी फौज ना होती, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, आप तसव्वुर नहीं कर सकती कि पाकिस्तान के जो दुश्मनों के अजायम है आज भी,
एग्री,
एंड दे आर रिजॉइसिंग द सिचुएशन मोर देन एनीबडी एल्स। इसीलिए तो मैं बार बार ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं,
अगर आपका मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, हु वाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस एंड हु इज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इवन नाउ ऑन द फ्लोर, उसने फौज के बारे में, एंड ही लीड्स द डिपार्टमेंट, उसने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था ये फौज के बारे में बहुत बुरे लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि आज तक एक जंग तो ये जीत नहीं सके,
तो ये फिर आज ये डिफेंड करें ना इसको, कैसे इनके साथ ये, फिर यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, ये तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि दे मस्ट थिंक अबाउट इट जी, कि ये जो लाइन टो की है इट हैज नॉट वर्कड एंड इट्स विल नॉट वर्क एनी मोर। ये इस हकीकत को तस्लीम कर लें, बार बार मैं कहता हूं कॉपी पेंसिल पकड़ लें, मैं आज भी कहता हूं 25th या 27th मार्च 2022 की तारीख ले लें जब इमरान खान ने उस साइफर का कहा, क्रोनोलॉजिकली लिखते जाएं एक एक चीज, वर्दे आर दे बीन एबल टू अचीव वर्दे एंड नाउ, उसमें चले सिर्फ कर लें इसको, तो यहां से आगे तो फिर भी हम हाइपोथिकेशन में ले जाएंगे ना, माजी तो एविडेंट हार्ड कोर एविडेंट फैक्ट है ना जी, उस पर तो कोई मफरूजे की बात नहीं। आप दो तारीखें ले लें, ये 26th 27th मार्च की और बाजवा साहब की रिटायरमेंट की, ठीक है, जो जो एक्शन उन्होंने लिए, एक चीज कर सके हैं चीफ?
नन।
दे शुड एक्सेप्ट दिस रियलिटी कि इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान टुडे, इट्स अ डिफरेंट पाकिस्तान टुडे, आई विश दे अंडरस्टैंड। और फिर मैं गुजारिश करूंगा इस पाकिस्तान में बल्क वो है जो नया पाकिस्तान है, जो नया नौजवान है आपका, हु आर गोइंग टू बी द फ्यूचर कस्टोडियन ऑफ दिस कंट्री। आज आप तसव्वुर कीजिए, मैं आप ही के प्रोग्राम से वसासत से बात करता हूं, मैंने पहले भी कहा कि इन मोस्ट ऑफ द कैंट्स पीटीआई हैज वन,
फैमिली
तो फौज का सेंटीमेंट है जी। आप इतने बड़े सेंटीमेंट को एक जिद के पीछे कहां तक लेके जाएंगे जी। मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी जी कि लेट्स पुट इट, डजंट मैटर जी, पास्ट इज पास्ट। आज भी हम बैठे हैं और आगे इसको मुस्बत अंदाज में जो रियलिटीज और जो फैक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखें, उन पे कंसीड करें और पाकिस्तान को इस दलदल जिसमें हम अपनी जातियात के पीछे धंसते जा रहे हैं जी, बता देने जी। या तो एक चीज जो इन्होंने इकट्ठा किया, जो पॉलिटिकल सारा ग्रुप इकट्ठा किया, या तो ये परफॉर्म कर जाते हैं, बता दें कोई एक चीज परफॉर्म कर सके जी। इकोनॉमी, बाकी चले आप घर के झगड़े में लगे रहते हैं चीजें, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है, हमारा वतन है जी।
इकोनॉमी नोबडी टॉक्स अबाउट,
आप देखिए जो डेट सर्विसिंग है जी, आप देख लीजिए कि कहां पे हम पहुंच गए जी। इसके बावजूद हम मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम कि वी पुल अप आवर सॉक्स जी एंड वी पुट आवर एग्स टुगेदर जी टू फिक्स दिस सिचुएशन।
एक सवाल है, जाहिर हम थोड़ा सा, आपने बड़ा खूबसूरत, और मैं हर बंदे से कहती हूं कि प्लीज इस मैसेज को हर एक को आगे आप खुद फॉरवर्ड करें और ठंडे दिल से सोच के, विदाउट बीइंग मेंबर ऑफ एनी पार्टी, ठंडे दिल से सुनिएगा जो तनवीर सुल्तान साहब ने बात की। फौज से लोग मोहब्बत करते हैं, मगर एक आम आदमी के बीच में जो नफरत फैलती जा रही है, मुझे दो वजूहत हैं। एक तो आपका जर्नलिस्ट बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि चाहे बाजवा साहब ने कराया, इमरान खान साहब के दौर में भी बेशुमार लोग बिहाइंड द बार्स थे, ठीक है, सख्तियां उनके ऊपर आई, चाहे इवन हामिद मीर साहब भी डायरेक्टली बाजवा साहब पे इल्जाम लगाते हैं। दूसरी वजूहत, नौजवान बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई करने के बावजूद तो उनके पोजीशंस नहीं है, इलाज के लिए प्रॉपर हॉस्पिटल्स नहीं, आबादी का एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में नहीं है। वेयर एज जब एक बच्चा अच्छी पोजीशन लेने के बाद पढ़ लिख जाता है तो उसके लिए जॉब भी नहीं है, क्योंकि वो ये फील करते हैं कि फौज ने हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी हाईजैक कर लिया, और जितनी आला पोजीशन है, आप नादरा की आला पोजीशन देख लीजिए, अगर आप किसी भी इदारे की आला पोजीशन देख लें, वहां पे एक्स आर्मी ऑफिसर भर्ती हुआ है, चाहे वो ब्रिगेडियर है, चाहे वो कर्नल है, डेपुटेशन के ऊपर उसको भेजा गया है। मेरा ख्याल है आम आदमी के दिल में कि 67% यूथ उस मुल्क में है, उस बच्चे को वो जब नौकरी लेने भी कहीं जाता है तो आगे एक फौजी बैठा होता है रिटायर्ड डेपुटेशन पे। इरेलेवेंट क्वेश्चन है तो मुझे चेक कर लीजिएगा, वरना मुझे प्लीज इसका रिप्लाई चाहिए।
आपने तकरीबन तीन सवाल किए जी। पहले आपने मीडिया से रिलेटेड बात की थी, जर्नलिज्म से रिलेटेड आदर आई शुड से। देखिए आरफ बहन, इस सारे ढाई साल के सफर में ना यही एक बड़ा कमाल हुआ है कि थिंग्स आर नाउ टुडे इन ब्लैक एंड व्हाइट, ग्रे तो तकरीबन एलिमिनेट हो गया है, आपको बड़ा वाज पता है कौन सा जर्नलिस्ट क्या है जी, तो इसमें तो अब वो बात नहीं है। और आप पढ़े भी तो आपको बड़ी क्लियर जो टोन है उसे पता लग जाता है वो बात। दूसरी बात रही आपकी इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट और नौजवान, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट पे जो है, जो इवन जो सिविलियन अदारे हैं उसमें मिलिट्री का, ये आपके सवाल का दूसरा और तीसरा हिस्सा है। अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमी चलेगी तो एम्प्लॉयमेंट होंगी। हुकूमत का सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है दैट इज जॉब क्रिएशन, किसी भी हुकूमत का, चाहे आप कैपिटलिस्ट निजाम का,
चाहे वो केंद्र की जॉब,
कहीं पे भी आप करें, जॉब क्रिएशन, जॉब क्रिएशन हुकूमतें नहीं कर सकती जी, हुकूमत एक बड़ी लिमिटेड है, जॉब क्रिएशन प्राइवेट सेक्टर का काम है। प्राइवेट सेक्शन तभी होगा जब इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, ये प्रूवन, इसके लिए यू डोंट हैव टू इन्वेंट द व्हील जी, इकोनॉमी आपके सामने है जी। इस सब जिद के पीछे जो पाकिस्तान ने इकोनॉमिकली, अब आगे आप बताइए बात को, आपने कहा कि जो सिविलियन असाइनमेंट्स हैं उस पर भी जो फौज का रोल है उसकी मुतालिक आपने बात की, कैबिनेट तो सिविलियन है ना, व्हाई शुड दैट कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेप्ट अ रिटायर्ड फौजी इन हिज ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इसका जवाब दीजिए। मिनिस्टर इज द हेड, मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ द
गवर्नमेंट, गेट द फेवर्स।
थैंक यू जी। तो मैंने आपको गुजारिश किया कि जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज हैं, जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज हैं तो आप उसको कैसे एलिमिनेट कर सकेंगे, आप जब फंडामेंटल कॉम्प्रोमाइज, ये तो तभी होगा कि अगर आप किसी, आपकी मैं गुजारिश आपसे करता हूं, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, अगेन मेरे सियासी दोस्त या भाई या नाराज होंगे, लेकिन आई एम कंपेल्ड टू से दिस थिंग, जीएचयू किस नजर से देखता है सियासतदान को, किस रिस्पेक्ट की नजर से देखता है?
सर,
अनफॉर्चुनेटली अगेन मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा जी, और अनफॉर्चुनेटली होता है कि वो एक्सेप्शन भी गेहूं के साथ गुण भी उसमें पिस जाते हैं जी। मतलब अनफॉर्चुनेटली वो एक्सेप्शन जो है वो भी इसकी कीमत देती है। मैं उस एक्सेप्शन को कहता हूं कि वाई डोंट यू राइज अबव। ये हो नहीं सकता कि हर जमात में इस किस्म के सेन और अच्छे लोग ना हो। मैंने अपनी हम्बल सी कैपेसिटी में एक दफा ये कोशिश भी की थी पिछली गवर्नमेंट में यार कि आप एक ग्रुप बन के मर्ज करें, यू बिकम अ प्रेशर ग्रुप एंड यू सीक पब्लिक सपोर्ट, और थोड़ा सा आपको अपनी पार्टी उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान की अवाम उन्नास आपकी बड़ी कदर करेगी, यू विल एंजॉय दैट गुड विल, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम उन्नास इतना आज हंगरी है जी, इतनी इस उस ख्वाहिश में बैठे हैं कि हमें म्यार जो है ये अवामी नुमाइंदों का जो म्यार है इसका वकार एक तो बहाल हो और इसका कोई म्यार हो जी। लेकिन आप जब खुद ही वेन यू सकम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जी कि बल्क और लॉट हमारी क्या है जी।
मेरा आखिरी सवाल आपसे यहाँ पे आ रहा है, आज क्या शायद आपकी नजर से गुजरा है कि नहीं जनाब, कल से मुझे दो लोग बड़े स्ट्रांग मिले जो जनाब काजी फायज ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी का बड़ा यकीन दिलाया मुझे। काजी फायज ईसा साहब इन तमाम को हर तरह की सिक्योरिटी भी मुयसर होती है। काजी फायज ईसा साहब आज शॉपिंग करने के लिए अपनी बेगम साहिबा के लिए एक बेकरी पे गए और वहां पर उस बेकरी वाले ने जो उसको रिमार्क दिए बड़ा बड़े बुरे, क्योंकि पाकिस्तान का आम आदमी अब वैशी होगा आप देखते जाइएगा, और उसने जो बयान दिया उसने बयान दिया कि तुम करप्ट हो और तुमने मतलब उनके बारे में। अच्छा, एक बंदा नीचे बेकरी की दराज के नीचे बैठ के उसने ये पूरी की पूरी वीडियो बना ली जिसमें दुकानदार उसको कह रहा है कि आपने करप्ट फैसले किए हैं, गलत फैसले किए हैं। एक बंदा नीचे बैठ के इसकी तस्वीर भी बना रहा है। पता चला है कि इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, वो पूरी की पूरी उसकी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। मैं वीडियो भी अभी दिखा देती हूँ, आपकी नजर से ये वाकया गुजरा है कि नहीं गुजरा?
नहीं, मैंने ये नहीं देखी जी। लेकिन अब देखने की जरूरत नहीं है, ये जुबान खल्क है आरफा बहन, ये जुबान खल्क है।
तो कोई भी आदमी बाहर निकल,
मैं ये अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बात फरमाई ना जी, आपने कहा कि इनको कोई बता, मैंने कहा जी कि आप बताने की जरूरत नहीं है, थिंग्स आर इन ब्लैक एंड व्हाइट। एक ही तरीके इसको समझने आके कि अगर आप अपनी जिद से बाहर आएंगे जी, दैट्स द ओनली वे कॉमन सेंस विल प्रिवेल अपॉन यू।
मेरा ख्याल है मैं आमिर से कहती हूँ कि अगर आमिर, अगर आपके पास पहुंच गई, आप सर इस वीडियो को देखें। काजी फायज ईसा साहब तशरीफ लेके गए हैं और उन्होंने जब वो किया आम आदमी, और आई थिंक दिस इज टू मच। तो आम आदमी को जब नौकरी भी नहीं मिलेगी, उसकी जगह पे एक बड़ा अफसर जो पहुंच वाला होगा वो उस जगह को हासिल कर ले। आ गई?
नहीं।
अच्छा, तो लोगों के दिल में तो सर यही नफरत आ जाएगी
जी। बिल्कुल, देखिए ये जो बार बार रिएट्रिएट करना चाहते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू दे एक्चुअली वांट, कि इमरान खान की क्या मकबूलियत है कि नहीं, ये जलसे हैं जी। तो मकबूलियत क्या है जी? मकबूलियत यह है कि दैट्स अ सेंटीमेंट अगेंस्ट ऑल दिस व्हाट्स हैपनिंग। उसकी अलमबरदारी इमरान खान के पास कोई शक नहीं है, उसकी लीडरशिप ने यहां तक चीजों को पुश किया है कि ये चीजें इस तरह नुमाया हो कि आगे कोई शक नहीं। इमरान खान की जो है पॉलिटिकल
एक्सपोज किया उसने,
वहां तक उसने इतनी रेजिलियंस शो की है कि ऑल दैट हैज स्टार्टेड टू बिकम सो ऑब्वियस। मैंने गुजारिश किया ना कि बहुत पहले कि ये सब कुछ होता था, इसमें से कौन सी चीज पहले नहीं थी होती। हाँ, ये आप जरूर कह सकती हैं, एक्सटेंट और स्केल का फर्क था जी।
जी सर, ये वीडियो जरा एक नजर देखिएगा जनाब फायज ईसा साहब। मुझे तो लगता है ये साहब एहतिशाम अब्बासी ने वीडियो तैयार की है। काजी फायज ईसा एक बेकरी पर गए, वहां पर दुकानदार ने जो लफ्ज कहा, गलत लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर हमें अपना कंसर्न रजिस्टर कराना है तो प्रॉपर वे में करना चाहिए। देखिएगा इसको।
स्ट्रॉबेरी कर लें और 9 प्लास्टिक चॉकलेट कर लें, चाहिए वो अलग अलग डब्बे पे, फिर एक और डब्बा खोल लें।
आजी, आजी, आजी।
ये डब्बा इतना बड़ा नहीं होता। have 9 in the box.
एक डब्बे में कितने आते हैं?
आप ईसा फाइव हैं? आप ईसा फाइव हैं?
लेकिन
आप ईसा फाइव हैं?
क्यों?
पर्पस है, ऑर्डर नहीं करते?
लाना तो आप पे.
हाँ?
लाना तो आप पे.
लाना तो आप
पे. लाना तो आप पे. मैंने
कहा रिकॉर्ड है.
अब वो रिकॉर्ड कर रहा था. उसने कहा लानत हो आप पे, तो उसने कहा रिकॉर्ड कर रहे हैं. द होल फैमिली इज एब्रप्टेड, सारी की सारी खान. और मैं आपको बताती हूँ कि ये मुआशरे में लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं.
बिल्कुल,
पीपल आर रेडी टू डाई नाउ.
मैंने आपसे आपके प्रोग्राम के बखाले बस में एक आपने सवाल किया कि इनको पदमन जी के इतनी अब ऑब्वियस है चीजें, जबान खल्क बनी हुई है.
आप देखिए, वो खातून ने उसके कैमरे के ऊपर हाथ रख दिया. इस आदमी ने काजी फैजी साहब को पहचान लिया था और मगर उसने उसके बाद इसको पहचानने के बाद में उसने कंफर्म किया जस्ट टू रिकॉर्ड करने के लिए कि आप फैजीसा हैं काजी. तो उसने कहा हाँ, क्यों ऑर्डर नहीं कर सकता. और जब फिर खातून ने महसूस किया ये रिकॉर्ड करें, तो शी टुक द फोन. वेयर एज लेटर ऑन पता चला है कि उनकी फैमिली को एबडक्ट कर दिया गया द होल. और अब हाउ दे विल बी पनिश, लेट्स सी. I think he will not be able to sleep. He could not sleep tonight.
मेरा ख्याल है कि अगर आप में थोड़ा सा भी
वुड नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट,
थोड़ा सा भी अगर हो तो आपको तो बहुत पहले. काजी फैज ईसा साहब, तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे बात नहीं करनी चाहिए ऑनरेबल, चूंकि इदारों का इतना तकद्दस है जी, कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस जो उन्होंने लाइव चलाया है, मैं हालांकि ले मैन हूं, मेरी वो लीगल इंटरप्रिटेशन की अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं है, लेकिन इवन एज ए ले मैन मेरा ख्याल है उस एक घंटे की प्रोसीड के बाद बिफोर दोज पैनल ऑफ ऑनरेबल 13 जजेस, द वे एवरीथिंग वॉज बींग रिनाउंस्ड एंड रिबाउंडेड बैक ऑन हिम. मतलब केस वहां से शुरू हुआ एंड एंडेड अप ऑन बल्ले का निशान, ऐसे कन्वर्ज हुआ वो केस. और उसके बाद भी अगर आप उस सीट पे बैठे हैं, तो आई डोंट नो कि एक प्रोफेशनल के लिए ये कैसे.
बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान का हामी और नासिर रहेगा. मैं बल्कि ये कहती हूँ कि ऐसे लोगों की सोहबत जो गलत है, गलत को गलत कहा जाए. मगर मैंने एक चीज बड़ी प्यारी पढ़ी, वो ये थी कि बाजों का मैं खुद अपने आप को भी कहती हूँ कि जो कम इल्मी है ना, वो हमें जहालत की तरफ ले जाती है. और सोहबत ऐसे लोगों से जरूर रखें जिन्होंने तारीख का बेहतरीन मुताला किया है, और एक नहीं मल्टीपल बुक्स का मुताला किया है, और बाकायदा उसका तवाजन और उसमें कर सकते हैं. दैट इज जनाब तनवीर सुल्तान साहब. सर आपका बहुत शुक्रिया. आप तशरीफ
बहुत शुक्रिया आशा बहन. आपने जो ये बात फरमाई है, मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ. मैं अपनी दानिश में जो समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि
सर आपने कंपैरेटिव स्टडी तो की है ना,
इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जी जी जितना. और मैं कोई आई एम नॉट द लास्ट वर्ड. अगर मेरी कहीं कोई मालूम या उसमें है तो आई ऑलवेज वेलकम जी टू करेक्ट माई सेल्फ. तो मैंने जो मकसद पाकिस्तान है जी, कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम क्या किस चीज का एक फोकस होता है ना, आपका इवेंचुअल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें जब ये देखते हैं कि ये चीजें हैं, तो आपका दिल तो
बहुत
है
ना जी.
बहुत शुक्रिया
तनवीर सुल्तान साहब का ये प्रोग्राम. और अभी आप प्रोग्राम को सुनिए भी, अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, और जरूर अपने फैमिली मेंबर्स को भी भेजिएगा. हकायक से आशना होना सबसे ज्यादा जरूरी है. चंद स्पॉन्सर्स एंड वेलकम बैक. मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ एक बार फिर जनाब तनवीर सुल्तान का भी जिक्र करना चाहती हूँ मैं. हमारे साथ एक बीमारी में होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बड़ी जरूरत है, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स बेसिकली हमारा लाइफ स्टाइल कंट्रोल करते हैं. वो कहते हैं हेल्थी लिविंग कैन लीड टू अ हेल्थी लाइफ, और लंबी जिंदगी का होता है. क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस वक्त खाना चाहिए. मजहब की भी अगर बात करते हैं तो चबा के खाना चाहिए, 32 बार चबाना बहुत जरूरी है. सोने से पहले खाना मत खाइएगा. सोने से कितनी देर पहले आप तिब्बे नब्बी को पढ़ के देख लें. तो हम आपसे मुलाकात एक होम्योपैथ की करवाया करते होते हैं. प्लीज स्टे ट्यून्ड, वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन. चंद स्पॉन्सर्स, वेलकम बैक.
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वालों एक सुनेहा. ब्रैम्पटन नु माण है शानदार कलाकारां समूहां ते संस्थावां दे जश्न मनाउण दा, जो कि मुफ्त ते दिलचस्प कला दे तजर्बे भाईचारे विच लियांदे हन. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਜਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/culturedays ਤੇ ਜਾਓ।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747471।
काश पैसे घर भेजना आसान और सुविधाजनक होता। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के जरिए आपके प्रियजन उसी दिन कैश पिकअप सर्विस के साथ लोकल मनी ग्राम एजेंट से कैश उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वे कैश उसी दिन ले सकते हैं जैसे कि ये दिन और ये दिन। अगर आप खुशियां बांटने जा रहे हैं तो $0 CIBC ट्रांसफर फी के साथ कैश पिकअप सर्विस के जरिए भेजें। CIBC.com/cashpickup पर जाएं। शर्तें और CIBC फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू। CIBC, एंबिशंस मेड रियल।
10 दिन हो गए तेन स्नेहा लाए नू पर तू इग्नोर ही कर रहे हैं। हुण फोन इग्नोर हो जूगा, गोलियां इग्नोर नहीं होनिया। आपदा ते आपदे परिवार दा ध्यान रखी, फिर ना कहीं भी दस्या नहीं।
जस्टिन ट्रूडो दियां सॉफ्ट ऑन क्राइम पॉलिसीज़ दी वजह नाल एक्सटॉर्शन राइज ते है। लिबरल्स ने एक्सटॉर्शन ते पेनल्टीज भी कटा दित्तियां हन। इस दौरान पियर पोलियर एक्सटॉर्शन दे अगेंस्ट बिल लेके आए सन अते जस्टिन ट्रूडो ते जगमीत सिंह ने इस दे खिलाफ वोट कीती। हुण सिर्फ कॉमन सेंस कंजरवेटिव्स ही कैनेडा दा माहौल ठीक कर सकदे ने। ब्रॉट टू यू बाय पियर पोलियर एंड कैनेडाज़ कंजरवेटिव।
इस महीने मेरी सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है, मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुर सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास 2 गाड़ियां और 1 घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटारियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसीं तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटारियो सरकार वल्लों कीती गई है।
ट्रक का घूमता पहिया कनाडा की मईशत की तरक्की का जामिन। आपका ट्रक सड़कों पर राज करे और कनाडा की मईशत तरक्की की राह पर गामजन रहे। ट्रक मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ट्रक की बेहतरीन सर्विस के लिए क्विक ट्रक लियो थ्रू आउट ऑन्टेरियो। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, वन स्टॉप शॉप। अब तीसरी लोकेशन एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नैपनी। क्विक ट्रक लियो 519-622-0660 quicktruckloop.com।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड 5:36:58 हमारी घड़ी में हो चुके हैं। सितंबर की 25th वेंसडे का दिन है। 24 ब्यूटिफुल गॉर्जियस 24 डिग्रीज टेम्परेचर। इस अच्छे मौसम में, अच्छे टेम्परेचर में साहब हम आपकी मुलाकात कर बड़े आपके पते की बात करने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज एवरीबॉडी गोज थ्रू दिस, एवरीबॉडी। कुछ लोग हैं जो दो दफा जाते हैं वहां पर। और होम्योपैथिक डॉक्टर है हमारे डॉक्टर मियां मुनव्वर। लास्ट वेंसडे को भी मैंने आपसे उनकी बातचीत करवाई थी। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में, बड़ा हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ आ रहे हैं। 6473766500 डॉक्टर साहब का फोन नंबर है, अगर आपने डॉक्टर साहब से बात करनी हो 6473766500 डॉक्टर मुनव्वर का फोन नंबर है और इन्हीं से हम आपकी बातचीत करवाएंगे। आज भी हम बात करेंगे हार्ट अटैक्स या हार्ट की बीमारियां, दिल का इलाज, दिल में क्यों, दिल की बातें। दिल की बातें तो इधर उधर भी निकल जाती हैं, तो मगर हम दिल की बातें करेंगे आपके पते के लिए। तो ڈاکٹر میاں منور صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ویلکم کرتا ہوں آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ.
نو پرابلم سر. ڈاکٹر صاحب پورے کتنے ڈفرنٹ آرگنز ہیں مگر ہر آرگن کا اپنا اپنا کام ہے. دل کا کام بہت امپورٹنٹ کام ہے اور اگر دل کو کچھ ہو جائے تو پھر شاید ہی انسان بچ سکتا ہے. کیا بتائیں گے ہارٹ اٹیکس ہوتا ہے؟
کہتے ہیں نا کہ آپ دل کے ساتھ مسلسل لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ دل برداشت کر رہا ہے, لیکن جب دل نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ آپ کو سمجھنے سنبھلنے کا موقع نہیں دے گا. تو کوشش کریں کہ ایسا موقع نہ آئے. تو دل کا خیال رکھیں دل سے.
دل کا خیال رکھیں دل سے. کیا بات ہے جی.
یعنی آپ کو چاہیے, یہ آپ کا ایسا آرگن ہے جو مسلسل کام کر رہا ہے اور اس نے مسلسل کام کرنا ہے. جب تک آپ ہیں دل کی دھڑکن آپ کے ساتھ ہے, اور جس دن دل نے ساتھ نہیں دینا اس دن آپ نہیں ہیں. تو اتنا اہم اور اتنا امپارٹنٹ اگر آپ کا آرگن آپ کے ساتھ ہے, اتنی وفاداری سے چل رہا ہے تو آپ کو بھی وفادار ہونا چاہیے اس کے ساتھ.
تب سب وی ہیئر آن اے ڈیلی بیسس ہمارے کسی دوستوں کو ہمارے کیونکہ ہمارے عمر کا بھی اب تقاضا ہو گیا, ہمارے سارے یار دوست بھی اسی عمر میں ہیں جیسے میرے عمر میں ہیں. تو کئی لوگ جن کو ہارٹ اٹیکس ہوئے اینڈ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, کئی لوگ جو ہارٹ اٹیک کے بعد کیور ہو گئے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں اسی بیماری میں چلتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ بتائیے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں؟
دیکھیں ہارٹ اٹیک کی جو میجر ہے نا وہ تقریباً 7 کے قریب ایسی سمٹم ہے, آپ کی لاپرواہی ہے کوتاہی ہے جو آپ کے ہارٹ اٹیک کی وجہ بنتی ہے. ایک تو آپ نے ہر صورت میں اپنا وزن مینٹین رکھنا ہے. اکارڈنگ ٹو ایج اینڈ ہائٹ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ ہارٹ اٹیک کے ایک اسٹیپ آگے قریب چلے گئے. اگر آپ کو باڈی میں شوگر ہے, شوگر کا کنٹرول لیول آپ نہیں رکھتے, اس کو مینٹین نہیں رکھتے, تو دوسرا اسٹیپ بھی آپ آگے چلے گئے. اگر آپ مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں, اسٹریس ہے, تو یہ تیسری کاز ہے. اگر آپ لیک آف ایکسرسائز کا ہے یعنی آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ آپ کی چوتھی کاز ہے. اور ایک آز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے وراثتن میں ہے آپ کے والد یا والدہ کو تو وہ بھی آپ کی ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتا ہے. تو لیکن وہ اس کو ہم ان سب چیزوں کو ہم چینج کر سکتے ہیں. مثلا آپ وزن اپنا نارمل کریں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو انٹیک کر رہے ہیں, جو آپ کھا رہے ہیں, کھانے سے پہلے جب اس کو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں جو بھی چیز, تو آپ یہ غور کریں کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی, کیا یہ کھانا میرے لیے مفید ہے. اور دل کے لیے ہر وہ چیز مفید ہے جو اپنی نیچرل فارم میں رہے گی, نیچرل شکل جس کی ہوگی. جس کو آپ زیادہ کک کر لیں گے, جس چیز کی آپ شکل خراب کر لیں گے, وہ آپ کے ہارٹ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. تو کوشش کریں,
مثال دیں آپ.
مثال ہے کہ آپ اگر سبزیاں استعمال کرتے ہیں تو سبزی کو اگر آپ بہت زیادہ فرائی کر لیتے ہیں تو اس کے سارے اثرات جو ہیں جو دل کے لیے بہتر ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. سبزیوں کو بوائل کریں, زیادہ کک نہ کریں, زیادہ آئل کا استعمال نہ کریں, اور سٹیم کر کے کھائیں. جو بھی چیز اس کا ایک فارمولا بنا لیں کہ جو چیز آپ سٹیم کر کے کھائیں گے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہوگی, اور جو چیز آپ فرائی کر لیں گے, جس کو آپ اس کے کو زیادہ مرچ مسالے ڈال لیں گے, وہ آپ کا بلڈ پریشر بھی زیادہ کرے گی, آپ کے لیے کیلریز کا بھی زیادہ سبب بنے گی, اور جب آپ کا فاسد مادہ زیادہ بنے گے پھر آپ کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہو جائے گا, ٹرائیگلائسرائیڈ لیول زیادہ ہو جائے گا, اور جب یہ چیزیں زیادہ ہوں گی تو پھر آپ کی آرٹریز میں بلاکج کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. تو یہ ضروری نہیں کہ ایک دن کی بات ہے, یہ مسلسل آپ کو جس طرح دل آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے نا, اس طرح آپ کو بھی اس کے ساتھ پورا تعاون کرنا ہوگا. اور یہ یاد رکھیں, یہ ایک لمحہ فکری ہے, آپ سب لوگ بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو 70-80% لوگ سروائیو نہیں کرتے پہلے ہی ہارٹ اٹیک. وہ جو 20-22% سروائیو کرتے ہیں ان کی گڈ لک ہے کہ وہ آگے مینج کر جاتے ہیں. تو آپ نے یہ انتظار نہیں کرنا کہ آپ سروائیو کریں, یعنی آپ ہارٹ کی پرابلم شروع ہو تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, آپ ہم سے رابطہ کریں, اویئرنیس لیں, आपने बॉडी के प्रॉपर 6-6 माह के बाद अपने टेस्ट करवाएं, अपना वेट को अकॉर्डिंग टू एजेंट हाइट रखें, अपना फूड ठीक करें, अपने स्ट्रेस को दूर करें और अपने डॉक्टर से लाजमी राबता करें। आजकल नेचुरल इतना इंग्रेडिएंट आ गए हैं, इतने नेचुरल फूड आ गए हैं के और इतनी इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी मेडिसिन इतनी अच्छी आ गई हुई है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। इससे खौफ ज्यादा ना हो, बीमारी से खौफ ज्यादा ना हो कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम हो ना जाए, इससे मोहतात हो, इसकी केयर करें, आपको कभी भी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी।
कुछ कहते हैं कि फ्रूट एंड सब्जियां जो है इसमें हर चीज का इलाज है। होम्योपैथिक की तरफ से आप एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर क्या रेकमेंड करते हैं कि कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जिसका हम उसको खाएं, या कोई ऐसे कोई फ्रूट्स ऐसे हैं या ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं, कौन क्या चीजें आप रेकमेंड करते हैं?
देखिए, आपके लिए जो है ना कैल्शियम की मिकदार लेना बहुत जरूरी है और कैल्शियम में आपके पास ग्रे फ्रूट बहुत अच्छा है, आपके पास ऑरेंज का जूस, अगर एप्पल आप रोजाना खाते हैं तो आप समझे आपको डॉक्टरों से दूर रखेगा सुबह खाली पेट। अगर आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फासद मादे कम बनेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर रहेगा। अगर आप लहसुन अदरक का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो आपको खून पतला करने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। वो लोग जो सेहतमंद हैं उनको लहसुन और अदरक रेगुलर इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर वो रेगुलर लहसुन और अदरक इस्तेमाल करते हैं तो उनको उनका जो खून है वो प्रॉपर पतला रहेगा, उसकी रवानगी सही रहेगी और वो बड़ा अच्छे तरीके से सरवाइव कर जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आप दवाई भी खाते जाएं और आप साथ बदप्रेजी भी करते जाएं, चिकनाइयों का इस्तेमाल भी ज्यादा करें, तो आपके लिए लम्हा फिक्री है।
डॉक्टर साहब, कोई हमारे पास पहले भी आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि कच्ची हल्दी, जो छोटी कच्ची हल्दी होती है उसको सुबह सुबह चबा के खाएं, क्या कहेंगे उसे?
देखें, ये हल्दी जो है ये आपके किचन में बहुत सी ऐसे डॉक्टर बैठे हुए हैं, आपके किचन में लौंग डॉक्टर है, आपके किचन में हल्दी डॉक्टर है, आपके किचन में सिरका डॉक्टर है, आपके किचन में सौंफ और अजवाइन डॉक्टर है। ये सारी चीजें एनर्जेटिक है और बूस्टर है आपकी बॉडी के लिए। और कच्ची हल्दी जो है उसकी अफादियत ये है कि वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, लेकिन वो उसका तरीकाकार ये है कि उसको आप दूध में मिलाकर पिए या पानी के साथ वाफर मिकदार में पिए। हर बंदा उसका एक क्वांटिटी चेक करे कि कितनी को क्वांटिटी उसकी बॉडी जो है वो बियर करती है, बेतुकी इस्तेमाल ना करें कोई चीज भी। इन सब को रेगुलर खाएं और थोड़ा थोड़ा खाएं, यानी एक दिन मत ऐसा करें कि आज 2 चम्मच हल्दी के खा लिए तो आप बेहतर हो गए। इनको रेगुलर इस्तेमाल करें।
और जो रेगुलर हल्दी होती है वो कहते हैं कि दूध में डाल के पिए, मे बी नीम गर्म दूध में डाल के पिए, रात के वक्त पिए, तो वो कोई बड़ी हफाजत
नहीं। रात का कोई भी ऐसी चीज जो आपको बूस्ट करती हो, दूध बूस्ट करता है आपको, एनर्जेटिक करता है, ये रात की खुराक नहीं है। आपको दूध सुबह के टाइम पीना चाहिए, 12 बजे पिए, वर्किंग आवर में पिए। रात को पिएंगे तो आपको दो काम करेगा, एक तो बदहजमी का शिकार करेगा, एक आपको बेख्वाबी का शिकार करेगा।
तो रात को अगर वही हल्दी को अगर सिर्फ रेगुलर वाटर में डाल के गर्म करके पी ले,
पानी में डालकर पी सकते हैं उसको, लेकिन सोते वक्त नहीं, कम से कम 2 घंटे का मार्जिन हो सोने से।
अच्छा, तो उसके बैकफायर भी हो सकता है?
उसका ये बेहतरीन तरीका कि आप अगर सोते वक्त अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो नहीं ठीक रहेगी आपके लिए, नुकसानदेह होगी।
अच्छी बात।
बेड पे जाते हुए आपने कोशिश करनी है कि जब आप बेड पे जाएं तो आपका खाना बहुत कम हो। और आपने अक्सर ये सुना होगा कि वो बंदा ठीक ठाक सोया और सुबह पता चला जी वो उसकी डेथ हो गई है, तो मालूम हुआ कि उसको तो कोई हार्ट प्रॉब्लम ही नहीं थी, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नहीं था, उसको वो कभी डॉक्टरों के पास भी नहीं गया, तो डेथ कैसे हो गई? होता यह है कि जब आप पेट भरकर खाना खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं और बेड पे बैठकर खाते हैं, तो फिर ये होता है कि पेट को वो खाने को प्रॉपर हजम होने के लिए मूवमेंट चाहिए होती है, तो बाद का आपको सोए में वो जो उसका जो सर्कल है वो कुछ फूड डिपॉजिट आपके गले में आ जाता है, वो गले में आकर आपकी सांस की नाली में चला जाता है। तो जब सोए में आपको गले में आएगा तो वो सांस की नाली में जाएगा, तो जब वो सांस की नाली में जाएगा तो आपको सांस, अगर वो उसकी क्वांटिटी कम हुई तो वो आपको फौरन आप उठ जाएंगे, अगर ज्यादा होगी तो वो आपका सांस ब्लॉक कर देगा। इसलिए कभी भी रात का खाना सोने से कम अज कम दो घंटे पहले खाएं। और हमारे पास बड़ी अच्छी ये कैनेडा में टीम है, हमारी डॉक्टरों की एक बड़ी अच्छी टीम है जिसमें न्यूट्रिशन है, फिजियोथेरापिस्ट है, होम्योपैथिक है, और हमने प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आप हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोग बीमार होने का इंतजार ना करें, सेहतमंद लोग भी आकर अपना चार्ट बनवाएं, अपने आपको चेकअप करवाएं, अपने टेस्टों को फॉलो अप करें। आपके तो कैनेडा में वैसे भी बड़ी सहूलत है मेडिकल टेस्टों की, खाने की नहीं है। आप खा क्या रहे हैं, आप पी क्या रहे हैं, आप दवाई कौन सी खा रहे हैं, आपका मूवमेंट क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, आपका जो पेशाब का फ्लो है वो ठीक है नहीं है, ये छोटी छोटी एक हिस्ट्री चार्ट होती है जो बाद उकात हमें नहीं पता चलता। खासकर 40 के बाद वाले लोगों को इतना मालूम नहीं होता, उन्हें उस वक्त मालूम होता है जब वो किसी न किसी प्रॉब्लम में मुबतला हो जाते हैं। इसलिए सेहतमंद लोगों को भी अपने आप को चेकअप करवाने के लिए जरूर रुजू करना चाहिए।
सामने नाजरीन हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मियां मुनव्वर साहब से जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। 6473766500 डॉक्टर साहब का फोन नंबर है। अगर आपने भी, और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी सिक फॉर यू टू कम एंड टॉक टू हिम, आप इनके पास आइए, इनसे बात कीजिए, ये डिफरेंट किस्म के टेस्ट करवाएंगे और मेक श्योर कि ये जो आप चाहिए न्यूट्रिशन हो कि क्या खाना चाहिए आपको, कब खाना चाहिए, कैसे। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है, मेरी आदत है बरसों से मैं जो है रात को सोते हुए दूध में हल्दी ला के पीता हूं मैं। अब आज से मेरा बंद हो गया ये, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको बताया कि क्यों वो चीज नागुजीर हो सकती है मेरे लिए। और बहुत सारी चीजें खाने के लिए, हम यहां से काम खत्म करके जब पहुंचते हैं घर तो 9:30-10 बजे हमने खाना खाया और फौरन बिस्तर पर चले गए। तो ये सारी चीजें, अगर डॉक्टर साहब आज यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में नहीं होते तो शायद मुझे इन चीजों का इल्म नहीं होता। डॉक्टर साहब से मुलाकात कीजिए, आपको किसी भी किस्म की, ये बात नहीं है कि होम्योपैथिक किसी एक पर्टिकुलर मर्ज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोई भी आपको। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं अभी, तो वो आपकी दवाइयों से भी उस पर कोई साइड इफेक्ट हो सकता है उसका?
नहीं नहीं, हमारी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी जो मेडिसिन है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो न्यूट्रिशन है, ये तो फूड टाइप होती है, ये बड़ी फ्रेंडली होती है। और जो लोग दवाई एलोपैथी खा रहे हैं या दूसरी दवाइयां खा रहे हैं, हम एकदम कोई दवाई बंद नहीं करते, हम ट्रैक सीधा करते हैं उसको, और उसमें उसकी क्वांटिटी की दवाइयों की कम करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से सर्वाइव करे। क्योंकि हर एक दवाई का अपना एक साइड इफेक्ट है। आप एलोपैथी कोई दवाई एक देख लें, उसके पीछे पूरा चैप्टर साइड इफेक्ट का होगा। तो हमारा ये कोई दावा नहीं, हम तो चाहते हैं कि तरतीब सीखो। जैसे आपकी तरतीब ठीक की है कि आप रात को दूध के साथ हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो तरतीब नहीं ठीक। हमारे 50% नहीं, हमारे 60% लोग बीमार होते हैं, उनकी उनके खाने पीने का तरतीब ठीक नहीं होती। हालांकि अच्छा खा रहे होते हैं, हेल्दी फूड ले रहे होते हैं, तरतीब ठीक नहीं होती। हम चाह रहे हैं कि हमारी अवेयरनेस में आए ताकि हम आप बीमार ना हो। हम बीमार होने से पहले आपको बचाना चाहते हैं, बीमारी से बचाना चाहते हैं। अल्लाह ताला की जात बचाने वाली, अल्लाह ताला की जात मदद,
मगर वसीला तो होता है डॉक्टर।
हाँ, लेकिन यह है कि हम चाह रहे हैं कि हम ये ऐसा सदका जारिया समीकर करें कि हम लोगों को बीमारियों से पहले की अवेयरनेस दें, और अगर कोई बीमार है तो वो भी आ जाए,
जो बीमार है वो भी आ जाए। और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि एलोपैथिक का इलाज, अगर किसी भी बीमारी का आपका एलोपैथिक का इलाज हो रहा है तो होम्योपैथिक का इलाज उसके साथ साथ करते रहे। और क्योंकि एलोपैथिक में कभी भी डॉक्टर्स जो है वो डोसेज उसके कम नहीं करते हैं, बस वो एक दे दिया तो आपने जिंदगी भर खाना है, चाहे मेरे हार्ट का है तो मैं जिंदगी भर वही दवाइयां खाता रहूंगा। अगर मैं इसके साथ साथ अगर होम्योपैथिक का भी इलाज करवाऊं तो उसमें ये होता है कि डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर मियां मुनव्वर, ये हमें बताएंगे किस तरीके से अपनी दवाइयों को कम किया जाए और उसके साथ साथ ये होम्योपैथिक का इलाज जारी रखें। डॉक्टर साहब बेहतर शुक्रिया सर आपका
जी, मैं सर थैंक यू।
और अगले वेंसडे इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। 6473766500 1-800-647-376-6500 डॉक्टर मियां मुनव्वर का फोन नंबर है, होम्योपैथिक के डॉक्टर है, आप इनसे रुजू फरमा सकते हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया सर।
जी बहुत शुक्रिया हमारे सर।
स्पॉन्सर्स का प्रोग्राम विल बी राइट बैक।
ब्रैम्पटन अग तो सुरक्षित रहो। 28 सितंबर नू अग सुरक्षा दे एक दिन लई कैसी कैंपबेल कम्युनिटी सेंटर विच सवेरे 10 बजे तो दोपहर 2 बजे तक साडे नाल जुड़ो अते फायर अलार्म दी जांच लई 50,000 वायदे सुरक्षित करने विच साडी मदद करो। फायर डिपार्टमेंट दे स्टाफ नू मिलो, जीवन बचाउण दे सुझाव सिखो अते ऑनलाइन या व्यक्तिगत तौर ते अपना वायदा साडे नाल सांझा करो। ज्यादा जानकारी लई अज ही विजिट करो brampton.ca/savedbythebees।
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241।
ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਸਭ 5:53 ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਅਬ ਆਪਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਲਿਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਸੇ ਆਪਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਜੋ ਉਨਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਛੇ ਨਾਮ ਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ OMC OMC ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ OMC ਇੱਕ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਕੁਜ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਐਂਡ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਖਾਨੇ ਖਾਨੇ ਹੋ ਤੋ ਆਪ OMC ਪੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ 1310 ਡੰਡਾਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਈਸਟ ਡੰਡਾਸ ਐਂਡ ਡਿਕਸੀ ਕਾ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕੈਸੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਪਕੀ ਜਾਨੀ ਪਛਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਨਾਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁ ਸਰ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ?
ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅਜੇ ਭਾਈ ਆਪ ਸੁਣਾਏ ਕਿਆ ਹਾਲ ਆਪਕੇ?
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਰ ਆਪਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋ ਹਰ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਬਤਾਈਏ ਜ਼ਰਾ।
ਜੀ ਜੀ ਮਾਜੋ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਸੇ ਐਗਰੀ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਲਵੇਜ਼। ਆਜ ਕੀ ਡੇਟ ਮੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੇ ਏਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ OMCC। OMCC ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਗਾ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ। ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇ ਆਪਕੋ, ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਆਪਕੋ ਅੱਛਾ ਖਾਣੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਮ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਮੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਭਾਈ ਹਮ ਯੇ ਥੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਥਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਯੇ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਏਅਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੋ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕੀਜੀਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਹਮ ਜੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵੋ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਤਾਈਏਗਾ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੋ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹਮਾਰੀ ਔਨ ਏਅਰ ਗਰੰਟੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਂਗੇ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਆਪਕੋ ਯੇ ਤਸੱਲੀ ਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਯੇ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੀ ਹਮ ਤੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੋ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗੇ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗੇ। ਅਬ ਇਸ ਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ ਦਿਲ ਮੇਂ। ਭਾਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਜਾਏਂਗੇ ਤੋ ਉਸਕੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਨ ਏਅਰ ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲਾਹੌਰੀ ਚਰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਰੋਹ ਫਿਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਦਰ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਰੋਹ ਫਿਸ਼ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਹ ਫਿਸ਼। ਔਰ ਰੋਹ ਫਿਸ਼ ਹਮ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਰੋਹ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਮਾਜੇ ਭਾਈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਹ ਫਿਸ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸੀਖ ਕਬਾਬ ਖਾਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੀ ਗੋਲ ਕੜਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਕੜਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕੀਜੀਏਗਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਿਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪ ਖਾਤੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਘਰ ਮੇਂ ਵੀ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਖਾਏ ਆਪਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਟੇਸਟ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲਾਹੌਰੀ ਟੇਸਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪ ਵੀਕੈਂਡ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਵੀਕੈਂਡ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਜੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਹੈ, ਨਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਫਤੇ ਅੰਡੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁਰਗ ਚਨੇ ਹੈ, और ये बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक। वो सुबह 9 बजे इसलिए हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जल्दी उठते हैं, जाके नाश्ता करते हैं अपनी फैमिली के साथ। आप अपनी फैमिली के साथ जाइएगा, और ये है डिक्सी एंड डंडास, मिसिसागा पड़ता है, डिक्सी एंड डंडास के बिल्कुल कॉर्नर पे OMCC ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, गूगल पे डालिएगा, आपको सीधा वहां पे ले जाएगा 1310 डंडास स्ट्रीट ईस्ट। ये सिर्फ नाश्ते की बात कर रहा हूँ, ये सैटरडे एंड संडे है। अगर आपने लाहौरी नाश्ता करना है, आपको सैटरडे संडे जाना है, 2 दिन के लिए अभी तक हमने नाश्ता ओपन किया हुआ है, और दो दो